تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 38 سے 38. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. بے شک اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے اہل ایمان کا کفار کے مکر و فریب سے. بے شک اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی دھوکے باز احسان فراموش کو. یہاں سے سبق کا آغاز ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورت حج کا انداز مکی اور مدنی صورتوں کا مکسچر ہے. کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھ کے واقعی لگتا ہے کہ مسلمان اب امن اور چین سے مدینہ میں رہ رہے تھے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد لگتا ہے کہ مسلمان مکی دور کے بالکل آخر میں تھے. یہ آیت جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت کا انداز بالکل مکی دور کے آخر کی آیتوں کا ہے. مشکلات کا سامنا تھا، چاروں طرف سے فتنے ٹوٹ ٹوٹ کے پڑ رہے تھے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کو مکہ جانے سے روک دیا گیا. پھر آپ مدینہ میں آئے اور اس وقت آپ کے ساتھ جو ساری چیزیں ہوتی گئیں، اللہ تعالیٰ نے ان اعصاب شکن حالات میں مسلمانوں کو خبر دی کہ غم نہ کرو، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دفاع کرے گا ایمان والوں کے بھروسے پہ. دال فاعین کا روٹ، اردو میں بھی ہم بولتے ہیں دفاع کرنا، دور کرنا، اسی سے لفظ دفاع بھی ہے. اب دیکھیے، جب روٹ کا پتہ چل جاتا ہے تو کس طرح سے ایک انسان اپنے آپ کو اس ترجمے کے ساتھ حکم کر لیتا ہے نا. لفظ دفاع دور کرنے کی بات ہے، تو دفاع بڑا خوبصورت لفظ ہے. ایک ہی لفظ جو ہے اس کو تھوڑے سے مختلف اینگل سے اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر بہت ہی اچھی بات، یعنی ایک نیا پن دکھتا ہے، اور ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے کہ واقعی کس طریقے سے ہم اس کو لے کے جا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ سن 6 ہجری میں کفار نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے نہیں دیا، کیونکہ وہ بہت غالب تھے اس وقت. صرف 2 سالوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ایسے حالات پیدا کیے کہ آپ فاتح بن کے وہاں داخل ہو گئے. اگر اس بات کو ہم اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں تو کبھی بھی اسلام کے راستے میں آتے ہوئے گھبرائیں نہ، پریشان نہ ہو. سچا اسلام اللہ کے حفاظت میں ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی یہ پروپیگنڈا آپ کو عام طور پہ دکھائی دے گا، مسلمانوں کے لیے بڑی سختی ہیں، حالات مشکل ہیں، اچھا ایئرپورٹس پہ جاؤ تو پینٹس پہن کے جاؤ، اپنا حلیہ بدل لو. یہ باتیں عام ہوتی ہیں. یہ آیت آپ کو اس کا جواب دے گی کہ ان الذین آمنوا، ایمان والوں کا دفاع کرتا ہے اللہ، مسلمانوں کا نہیں کرتا. دیکھیے، ایمان ایک مختلف کیفیت ہے اسلام سے. اسلام ایک لیگل ٹرمینالوجی ہے. آپ مسلم ہمیشہ ایک جیسے رہیں گے. کسی مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا، دفتر میں بچے کی ولادت کے اوپر جو آفس میں لکھوایا جاتا ہے کس خانے میں آپ نے نام لکھا، یہ ہے آپ کا اسلام. لیکن ایمان بدلتا رہتا ہے. پچھلے سبق میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ تھوڑی سی ہم بات کریں گے ایمان اور اسلام پہ، تو یہاں آج کے مسلمان کو آج کے مومن سے تعبیر نہ کیجیے گا. اسلام ایک لیگل ٹرمنالوجی ہے. آپ اسکول میں آئے، آپ یہاں کے رجسٹرنٹ بن گئے، آپ رجسٹرڈ ہیں، ہر فائل میں آپ کا نام آ گیا، ہر لسٹ میں آپ کا نام آ گیا. یہ ہے مسلم ہونا. ہم جب لا الہ الا اللہ کہتے یا اس کا اقرار کرتے ہیں تو مسلمان بن چکے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد اب آپ سب اسٹوڈنٹ جو یہاں آ چکے ہیں، ہمارے ریکٹس اور آپ کی پارٹیسپیشن اور کلاس کے ساتھ آپ کے تعلق کے ناطے میں ہر ایک کا فرق ہوگا. ہو سکتا ہے کچھ پورے نمبرز لیتے ہوں، کچھ آدھے لیتے ہوں، اور کچھ ڈویژن صرف نمبرز پہ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں آپ کے ٹکٹس، آپ کی پنکچوئلٹی، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے 25 پہ 25 آتے ہوں ہر پیپر میں، لیکن وہ رول کال میں پورا نہ ہو، وقت پہ نہ آتا ہو، اس کا بیہیویئر اچھا نہ ہو. اب ہمارے پیپرز نے آپ کی وہ چیزیں نمبرز کے اعتبار سے اکیڈیمیکلی آپ کو 25 دے دیے، لیکن کچھ لوگ ہیں ان کے نام کسی بھی اکیڈیمک ریکارڈ پہ نہیں، لیکن جب ایتھکس میں دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے یہاں کے. یہ ہے ایمان کے درجے. ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. بہت مشہور ٹرمینالوجی ہے اسلامی عقائد کے اندر، اور وہ کیا ہے کہ الایمان یزید و ینقص. ایمان بڑھتا بھی اور گھٹتا بھی ہے، لیکن الاسلام لا یزید ولا ینقص یتنقص، کہ اسلام نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. आप मुसलमान हो गए, दैट्स इट, ख़त्म। ये ऐसे ही है जैसे ये दरवाज़ा बन गया, ना इसने अब घटना है ना बढ़ना है। लेकिन ईमान एक ज़िंदा चीज़ है, ईमान एक जानदार चीज़ है, लिविंग क्रिएचर है। और जो जानदार होता है ना वो घटता भी है बढ़ता भी है। मतलब ये देखिए, ये माइक मेरी टेबल पे रखा हुआ है, पिछले 1 साल से अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल इतना ही और ऐसे ही है। और अच्छी केयर की जाए तो चीज़ें कई कई साल तक चलती हैं, ख़राब नहीं होती। इसके बरक्स से आप एक छोटा सा बीज ज़मीन में डाल दें तो 1 साल के बाद उसमें चेंजेस आएंगी, बिल्कुल आएंगी। हम अपने आप को देखें, जब बच्चा दुनिया में आता है उससे लेके दुनिया में से जाने तक इंसान पर कितने यजीद व यनकुस के हालात आते हैं ना। पहले बच्चा बड़ा होता है, दांत उगते हैं, फिर दांत उतरते हैं। आप कभी सेहतमंद होते हैं, कभी बीमार होते हैं, कभी आप वेट गेन करते हैं, आप कभी लूज़ करते हैं, क्योंकि आप ज़िंदा हैं। जो ज़िंदा नहीं, एक तस्वीर या एक स्टैचू पड़ा रहे, वो वैसे का वैसे रहेगा। यही कैफियत ईमान की होती है। मुख्तलिफ हालात में हमारा ईमान कम होता है और मुख्तलिफ हालात में हमारा ईमान बढ़ता है। जितने हमारे ऊपर एडवर्स कंडीशंस आते हैं ना, नामवाफिक हालात आते हैं ना, उतना हमारा ईमान बढ़ता है। जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनसे पूछ लीजिए कि गर्मियों में पौधे जल्दी बढ़ते हैं, आप दिनों में फ़र्क देखेंगे पौधों का। हम तो यहाँ वैसे ही बहुत तेज़ी से देखते हैं, आप देखते हैं कि हफ्तों के फ़र्क से फूल उगते हैं, एक रंग के दूसरे के। लेकिन जूँ ही सर्दी शुरू होती है ऐसे लगता है हर चीज़ जम गई। और आपको शायद ये चीज़ भी मालूम होगी कि हमारा कद, यानी ये जो बच्चों के कद बढ़ने के दिन होते हैं ना, तो गर्मियों में बच्चों का कद जल्दी बढ़ता है। गर्मियों में खाना हमारा जल्दी हजम होता है। देखें, आप इतनी मोटी मोटी रोटियां भी खा लेते हैं गर्मियों में, फिर आपको भूख लगती है। तो जितने नामवाफिक हालात आते हैं ना, उतना ईमान बढ़ता है। और जब ठंडे हालात आते हैं ना, सर्द हालात, तो फिर हम भी ठंड जाते हैं। बाजार हमें मुश्किल अच्छी नहीं लगती, हमें बीमारियाँ अच्छी नहीं लगती, लेकिन असल में ये हमारे ईमान को बढ़ाने के लिए आती हैं। हमें कुरान का ये पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बहुत पढ़ लिया आप, थक गए हैं, लेकिन ये पढ़ना आपके ईमान की हेल्थ के लिए। इसी तरह कम भी होता है, शादियों में गमगन हो जाए, घर की कोई शादी आ जाए, 4-6 दिन आपकी नमाजें खुशबू वाली ना रहें, आपको अपने अंदर कमी का एहसास होगा। हमारे अंदर अल्लाह सुबहाना तआला ने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं। जैसे गाड़ी के अंदर ज़रा सी गड़बड़ होती है ना तो लाइट जल जाती है। लोग कहते हैं जी ये बैटरी की लाइट जल गई है, कुछ गड़बड़ है। कोई कुछ कहता है इसका तेल कम हुआ है, कोई कहता है इसका पानी कम हुआ है। इसी तरह याद रखे, हमारे अंदर रूहानी तौर पर इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, अपने आप को चेक किया करें। क्यों अल्लाह के नबी ने ये बात कही कि तुम अपना मुहासबा किया करो, खुद चेक करो कि तुम किस दर्जे पे खड़े हो। अगर आप किसी चीज़ को अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं ना तो वो ठीक रहती है। शुगर पेशेंट्स क्यों दिन रात अपने आप को सुइयां लगा लगा के तकलीफ़ देते हैं? वो चेक कर रहे होते हैं ना, शुगर बढ़ी भी तो नहीं, कम तो नहीं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदे को टेस्ट से बगैर ही पता चल जाता है कि इस वक्त मेरी बढ़ी हुई है, मुझे नींद आ रही है, या मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा है। और कभी कई के दिन वो टेस्ट नहीं करते, वो कहते नहीं मुझे पता है मैं ठीक हूँ। इसी तरह आप एक वक्त आता है कि इतने ताक हो जाते हैं, इतने माहिर हो जाते हैं कि आपको अपने ईमान के घटने और बढ़ने का पता चलता है। यही है वो कैफियत जिसको आप कहते हैं फलहमहा फजूरहा व तक्वाहा। हमने इंसान के अंदर फजूर गुनाह की कैफियत भी पैदा की है और उसके अंदर तकवा की कैफियत भी पैदा की है। आपको खुद पता चलेगा कि ये सोच शैतान की तरफ से आई है, ये रहमान की तरफ से आई है। क्यों हज़रत उमर को देखकर शैतान गली बदल लेता था? क्योंकि हज़रत उमर अपने ईमान को उस लेवल पे रखते थे कि जिसको देखते ही शैतान जो है वो कपकपाने लगे। शैतान हमें देख के शायद दूसरी गली से भी आता होगा कि आओ ज़रा शेक हैंड करके चला जाऊँ। तो जितना ईमान ज़्यादा होगा उतनी अल्लाह की तरफ से मदद ज़्यादा होगी। यहाँ देखिएगा, युदाफ्यू के बाद अन आ रहा है, ठीक है। अब अगर दफ़ा आ के बाद इला लगा हो, इला जो कि या नहीं है, ये थोड़ा सा आपको एक ग्रामर का रूल बताने लगी हूँ कि दफ़ा आ के बाद अगला लफ्ज़ यानी उसका सिला इला हो तो इसका मानी होता है किसी को कोई चीज़ देना। आप किसी को कुछ देते हैं, ये भी कुरान पाक में आता है फदफाउ इलैहिम अमवालहुम। सूरत निसा में हम पढ़ चुके कि यतीमों के माल जो है फिर उनके हवाले कर दो, वहाँ ये मानी आ रहे हैं। लेकिन अगर दफ़ा के बाद अन हो, जैसे कि यहाँ है युदाफ अन, तो इसका मानी होता है हिमायत और नुसरत, मदद करता है अल्लाह ताला। अब यहाँ अन है ना, तो मतलब क्या है कि कुफार के मुकाबले में जब अहले ईमान सीना सपर होके खड़े होंगे तो अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत इनके शामिल हाल होगी, वो इनकी हक का दिफा करेगा। यकीन करें ये इतनी बड़ी बशारत है, मुसलमानों को किसी टैंकर की और किसी F-16 की भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ हाथ में होगा, लेकिन अगर ईमान नहीं है तो वो बिल्कुल रेत की गोलियां बन के गिर जाएंगी। बिशारत है कि तुम दुश्मन की कुव्वत और वसाइल से खरासा मत हो, मत डरो, अल्लाह तुम्हारा निगेबान है। साथ ही साथ बताया जा रहा है कि शरीक तुम्हें खुद होना है। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत नुक्ता है, युदाफ़ि अनिल्लज़ीना आमनू, जाना मैदान जंग में तुमको खुद पड़ेगा, हक और बातिल के मार्कों में शरीक तुम होगे, फिर मदद मिलेगी। तुम घर बैठ के सो जाओ और को आराम करो, अल्लाह कहते हैं मैंने तो अल्लज़ीना आमनू का दिफा करना था, वो तो इधर है ही नहीं है, तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की ईमान को बढ़ाएं। फिर एक लेक्चर जो काफ़ी मारूफ भी हुआ था, वेब पे भी मौजूद है, फ्रूट्स ऑफ ईमान, तो उसमें हमने ईमान के जो फल देखे थे उसमें एक आयत भी कोट की थी कि सच्चे ईमान का एक फल ये मिलता है कि अल्लाह ताला उस बंदे का दिफा कर देता है। हाँ, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल खवानिन कफूर, धोखेबाज और एहसान फरामोश को अल्लाह पसंद नहीं करता। ये कौन सा धोखा है? ईमान ला कर धोखा देना। युखादिऊना, कल उस पीछे हम पढ़ चुके, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह कहना और खदा करना, धोखा देना, और कफूर ना शुक्रा, एहसान फरामोश। अल्लाह इस्लाम जैसी प्यारी दौलत दे, इतनी प्यारी नेमत दे, और इसके बावजूद एक इंसान उसकी तरफ ना पड़े तो अल्लाह ताला की नज़रों में उस शख्स की कोई वक़्त नहीं रह जाती। ऐसा शख्स फिर अपने आप को अल्लाह ताला की मदद से बिल्कुल दूर कर लेता है। फिर इसके बाद अगली आयत में पहली दफ़ा हुक्म दिया जा रहा है। अब यहाँ लिख लें, इस आयत से पहले नज़ूल के एतबार से ये पहली आयत है जिसमें जिहाद की इजाज़त मिली थी। 13 साल की चोटें खाने के बाद, मक्का में मुश्किलात बर्दाश्त करने के बाद, सबसे पहले अब इस आयत में इजाज़त दी जा रही है। क्या? उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इज़्ज़त दे दिया गया, इजाज़त दे दी गई। देखिएगा मजहूल है, यानी दे दिया, बस अल्लाह ने कहा अब इजाज़त है, लफ्ज़ नहीं आया किसने दिया है, क्योंकि इसमें फ़ाइल का नहीं पता चलता। किनको? अल्लज़ीना, उन लोगों को इजाज़त दी गई। किस बात की इजाज़त दी गई? उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, इजाज़त दी गई जिहाद की उन मजलूमों को जिनसे जंग की जाती है इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया। और साथ इनको बता दो कि वइन्नल्लाह अला नसरिहिम लकदीर, बेशक अल्लाह ताला इनकी नुसरत पर पूरी कुदरत रखता है। उसको खूब अच्छी तरह पता है कि मुझे किसकी कहाँ मदद करनी है, किस तरह से करना है और क्या मामला होगा। जब यह आयत नाजिल हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसके ऊपर लोगों को खबर दी। मक्का में जब अल्लाह के नबी सल्लम पर वही नाजिल हुई, पहली वही, आप कोहे सफ़ा पर आए, मुशरिकीन को तौहीद की दावत दी, उनकी आतिश गज़ब भड़क उठी, मुखालफत का तूफान खड़ा कर लिया। इस तरह वही ज़ुबानें जो कल तक सादिक और अमीन कह रही थी, आज काहिन और मजनू और शायर और मुफ्तरी जैसे इल्ज़ाम लगाने लगीं। जो इस्लाम कबूल करता उस पर इंतहा के जुल्म ढाए जाते, हज़रत बिलाल को दहकते हुए अंगारों पे लिटाया जाता, फिर यासिर और उनकी बीवी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और ऐसे लोगों को मारा गया। कितनी तकलीफ़ें हैं, यानी लोगों ने अपनी पुश्तों पे तारीखें रकम की, लोगों के जुल्म की, तकलीफ़ों की, हत्ता कि आप देखिए कि बड़े घरों के लोग जैसे मुसअब बिन उमैर जैसे शख्स मुसलमान हुए और उनको इतना सताया गया, इतना तकलीफ़ दी गई कि उनके जिस्म पे कपड़े भी पूरे नहीं होते थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हो जब मुसलमान हुए तो आपका चचा कच्चे चमड़े में कस कर आपको बांध देता और चिलचिलाती हुई धूप में फेंक देता, धूप पसीने और ताफुन के मारे आपकी जान निकलने लगती। आज भी देखिए लेदर जैकेट्स कितनी सर्दी में पहनते हैं ना, गर्मी में और मक्का की गर्मी में जब लेदर की जैकेट पहना कर उसमें बांध कर धूप में फेंका जाए तो आप सोचिए कि क्या चर्बी नहीं पिघलती होगी। बिअन्नहुम ज़ुलिमू, जुल्म की दास्तानें थी। अबू बकर सिद्दीक को इतना मारा गया कि आप लहूलुहान हो गए, कई घंटे बेहोश रहे, और जिस्मानी अजियतें, तकलीफ़ें, बात बात पर मजाक, हर आयत पर एतराज़, हर हुक्म शरीयत पर आवाज़ें कसे जा रहे हैं, कुफर का हर तीर जो था वो इस्लाम की तरफ हो रहा था, लेकिन खामोश, कुफ्फ अयदियकुम, खामोश खामोश, अभी हाथ रोके रखो। और आखिर इजाज़त मिल गई मक्का से मदीना आने की। यसरब नाम की एक छोटी सी बस्ती को मदीना तो नबी कहा जाने लगा। और इस तरह मुसलमान 200-250 मील का सफ़र तय करके इतनी दूर आ गए, फिर भी उनके गज़ब और गुस्से की आग ठंडी ना हुई, मुसलमानों को चैन न लेने दिया। 10-10, 20-20 काफिर आते और मदीना मुनव्वरा में छुप छुपा कर हमले करते, मुसलमानों की चरागाहों में उनके जानवरों को तकलीफ़ देते। और इस किस्म के करते करते काम जब हद हो गई, तकरीबन 14-15 साल हो चुके थे मुसलमानों को जुल्म सहते हुए, तो आज कहा जा रहा है कि उज़िना लिल्लज़ीन युक़ातलून बी अन्नहुम ज़ुलिमू। बस अब सब्र का पैमाना लबरेज़। अब तुम इतने हो चुके हो कि अब तुम बदला ले सकते हो। अब ज़रा इनकी आंखों में आंखें डालो, इनको बताओ कि तुम ऐसे नहीं हो। और सोचिए वो वक्त कितना कठिन था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बहादुर मौजूद थे मुसलमानों की सफ़ों में, जिन्होंने बाद में इतने जौहर दिखाए। हज़रत हमज़ा जैसे मौजूद थे, ठीक है खालिद बिन वलीद तो मुसलमान ज़रा बाद में हुए, लेकिन इतना ज़्यादा डिसिप्लिन था कि अल्लाह के नबी ने कह दिए कि अभी हाथ नहीं उठाना, आपको मक्के के 13 सालों में कोई एक झड़प नहीं दिखेगी। कि जज्बात में आके हज़रत उमर ने मुक्के मार के मार दिया कि चलो भाग जाओ, गोली चला दी। आज के मुसलमान ने तो हर बात को इस्लाम का नाम लेकर बदनाम करने की ठान ली ना, कि जी हमने खुदकश हमला किया तो इस्लाम के नाम पे किया, हमने मदरसों में जाके गोलियां चलाई हैं तो इस्लाम के नाम पे चलाई हैं। ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम समा बसर का हुक्म देता है, सुनो देखो गौर करो, अतात का हुक्म देता है। इतना प्यारा डिसिप्लिन था कि कोई कानून को हाथ में लेने के लिए तैयार नहीं होता था। और अल्लाह ताला ने जब हुक्म दिया, फिर आप देखते हैं कि वही जो सहाबा थे कितने उन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए। तो आप ये ना कहें कि सहाबा कराम बहादुर बहुत थे, आप कहिए कि वो बहादुर होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के अंदर बंधे हुए लोग थे। किसी में कितनी बड़ी काबिलियत क्यों ना हो, लेकिन जब वो मुंह सर हो जाता है ना, वो कहते हैं ना मुंह तोड़ हो जाता है, तो उसकी खूबी खामी बन जाती है। अगर सहाबा कराम सरकश होते ना, तो आप खुद ही आपस में मर खप के तैयार हो चुके होते। अल्लाह ने यहाँ तकलीफ़ों की भट्टियों में तपाया, उनके ईमान को बढ़ाया। युदाफ़ुनिल्लज़ीन आमनू के ज़िमन में अल्लाह ताला ने उनको ईमान के उस दर्जे पे किया कि जहाँ वाकई अल्लाह की मदद आती है। अगर शुरू में ये लड़ाई झगड़े होते तो आज हमारा हाल जैसे आप देखिए कि इस्लाम तो अभी आया नहीं और मुसलमान लड़ने को तैयार है। किसी भी काम के आगाज़ में ही अगर आप देखिए कि उहदों की जंगें शुरू हो जाएँ, लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हो जाएँ, कोई मुल्क अभी आज आज़ाद हुआ है और उसमें सदारत और वजारत के झगड़े शुरू हो जाएँ, तो आप सोचिए कि उसके अंदर बाकी मसाइल कितने बढ़ जाएंगे। पाकिस्तान बनने के कितने साल के बाद 1965 में जंग हुई थी, लेकिन उसने भी मुसलमानों को कितना नुकसान दिया। तो लिहाजा इस्लाम क्या हमें यहाँ पैगाम देता है कि पहले बर्दाश्त करो। आप इसको इस एंगल से भी ले लें कि एक लड़की ससुराल में जाती है, जाते ही अपने हक मांगने शुरू हो जाए, जाते ही वो कहे बस जो मैं चाहती हूँ वो करें, तो नहीं, पहले सब्र तो करो, हो जाए तुम पे जुल्म ताकि तुम ईमान के अंदर आ गए आओ, फिर तुम ज़रा अल्लाह ताला की मदद से बात करोगी तो मदद होगी। तो बहरहाल हर बंदा इसको अपने एंगल से समझ सकता है। अगली आयत में अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं, अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरि हक, और वो मज़लूम जिनको निकाल दिया गया इनके घरों से ना हक। कौन? मुसलमान जो मदीना में फंसे हुए थे, ना चोर थे ना उचक्के थे, लेकिन कैसे उनको घरों से निकाला, उनके घरों पर कब्जे कर दिए। जब मुसलमान हिजरतें करके आए तो अपने घर ऐसे ही खुले छोड़ आए थे, कोई साथ थोड़ी ला सकता है बंदा सामान। पीछे से लोगों ने यूं लूट मार की कि जैसे माले मुफ्त दिले बेरहम वाली बात। क्यों, कसूर क्या था? इल्ला यकूलु रब्बुना अल्लाह, बस सिर्फ इतनी सी बात पे कि उन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह। तुम्हें तुम कुछ नहीं कहते, हम ये तो नहीं कहते कि तुम्हारा रब कोई और है या उसको मानो या इन बुतों को छोड़ो। मुसलमानों ने तो बहुत कम उनको डायरेक्ट चोट की थी इस पे कि तुम बुतों को ना पूजो, बस ये कहा करते थे कि हमारा रब अल्लाह, हम जिस रब को मानते हैं वो रब बहुत है, वो हमारी मदद करने को काफ़ी है। ऐसे मुसलमानों की फिर अल्लाह मदद क्यों ना करे? किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, फरमाया वलौला दफुल्लाहिन्ना सबा दहुम बिबादिन, और अगर अल्लाह बचाओ ना करता उन लोगों का, किन का, जिनका बाद में किया, तो क्या करता, इन्हें एक दूसरे से टकरा कर ताकतवर की गारत गरी से मुनहदिम हो जाती क्या? लहुद्दीमत सवामी व बियाउं व सलवातुं व मसाजिदु युस्करुफी खस्मुल्लाही कसीरा। और अगर अल्लाह बचाव न करता लोगों का इन्हें एक दूसरे से टकरा कर, तो ताकतवर की गारत गरी से मुनहदिम हो जाती यानी गिर जाती खानकाहें और गिरजे और कलीसे और मस्जिदें जिनमें अल्लाह का नाम कसरत से जिक्र किया जाता है। और फिर वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, और अल्लाह ज़रूर मदद करेगा उसकी जो उसके दीन की मदद करेगा। इसको तो हाईलाइट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अल्लाह के दीन की मदद करने को हम अल्लाह पर एक एहसान जतलाते हैं। अल्लाह कहता है असल में तुम मेरे दीन की मदद करके अपनी मदद कर रहे हो, तुम अपनी ज़िंदगियों को बहुत सारे फितनों से महफूज रख रहे हो, क्योंकि तुम मेरा दिफा करो, मेरे दीन का दिफा करो, मैं तुम्हारा दिफा करूँगा। और तुम क्या करोगे अल्लाह के लिए? तुम तो कमज़ोर इंसान हो, लेकिन अल्लाह कैसे मदद करेगा तुम्हारी? कि इन्नल्लाह लकवीयुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह ताला कुव्वत वाला और सब पर गालिब है। इस आयत के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अल्लाह ताला ने रब्बानी सियासत का एक असूल बयान कर दिया। देखिए, एक सियासत इंसानों की बनाई हुई है ना दुनिया में, जो हमें देखती है पॉलिटिक्स के तौर पे, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने यहाँ एक रब्बानी सियासत का असूल बयान किया। और वो क्या है कि ताकतवर का तवाज़न बरकरार रखने में ही तमाम बनी नौ इंसानियत का भला है। अगर जिसके हाथ में ताकत है, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर ये असूल दुनिया में चलेगा ना, तो याद रखिए कि ताकतवर दिन ब दिन ताकतवर होने के साथ साथ जालिम और जाबिर भी होगा, जैसे आज दिख रहा है। ये जो हमें आज ग्लोब पे नक्शा मिलता है ना, ये अमीर मुल्क, ये गरीब मुल्क, ये सुपर पावर्स, ये एशियन कंट्रीज, ये वेस्टर्न कंट्रीज, ये बांट गैर फितरी है। इस्लाम इस चीज़ को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता कि कुछ मुल्क तो इतने ज़्यादा बड़े बन जाएं कि उनके हाथ में सारी मोनोपलीज आ जाएं, वो कानून पास करें, वो दुनिया को अमन दें, वो चैन दें, सब उनकी तरफ देखें। अल्लाह ने सब की नज़रें ऊपर लगवाईं, लिल्लाहियत। मुझे एक जुमला याद आता है किताबों में जो अक्सर पढ़ाया जाता है, और पता नहीं अमली तौर पे कहाँ पढ़ाया जाएगा, लेकिन हमारे स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ की किताबों में एक जुमला अक्सर लिखा होता है कि हाकमियत आला अल्लाह के हाथ में। लेकिन अरे कभी समझ ही नहीं आया, मेरा नहीं ख्याल कि टीचर्स भी इसका कोई मफहूम बयान करती हैं। रट लेते हैं ये जुमला स्टूडेंट के, हाँ जी हाकमियत आला का सारा निज़ाम अल्लाह के हाथ में, और साथ ही वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट्स और सुपर कोर्ट्स और बड़ी ताकतें, बड़ी ताकतें। अल्लाह ताला क्या चाहते हैं इस दुनिया के बारे में? हाकिम आला अल्लाह है, कवानीन उधर से आए, पाबंदियाँ उधर से लगे, वसाइल उधर से आए, एड उधर से आए, उससे लोग डरे, उसकी तरफ निगाहें लगाएं, उसकी आर्मी बन के जिए, उसकी छौनियाँ बने लोग, उसकी मंडी बने। इसी को अल्लाह ताला ने यहाँ बयान कर दिया कि जो बंदा अल्लाह के इस कानून पे चलेगा ना, अल्लाह उसकी मदद करेगा। लेकिन अगर ताकत और कुव्वत एक कौम के हाथ में दे दी जाए, तो दुनिया से अमन और सलामती का जनाजा निकल जाता है, जैसे कि आज निकल रहा है। ताकतवर हाथ कमज़ोर और बेबस कौमों पर इस तरह पड़ते हैं कि दिन ब दिन जुल्म होता है, कोई टोकने वाला नहीं, टोके कौन? देखे कोई बुरा काम करे, गलत करे, तो थानेदार साहब को बुलाएंगे, और अगर थानेदार ही किसी की इज्जत के ऊपर हाथ डाल लें तो कौन रोकेगा? नतीजा क्या होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस के जिम्मन में, शहर और बस्तियां खंडर बन जाते हैं, बाग और खेत उजाड़े जाते हैं, इज्जतें आबरू लुटने लगती हैं, सारे खजानों पर कब्जे उनके होने लगते हैं, कोई बोल नहीं सकता। आप बना लें UNO, किसके हाथ में उसकी चाबियाँ, किसके पास हैं उनकी सारी सीटें? हत्ता कि फिर इसका आखिरी नतीजा क्या होता है कि लोगों की मजहबी इबादत गाहें भी कायम नहीं रहती। अब देखिए, लोग दीन को माने ना माने, अमल करें ना करें, लेकिन उनको अपनी मजहबी इबादत गाह से अकीदत बहुत होती है, क्योंकि उन्होंने हर साल में एक दफ़ा वहाँ जा कर ईद की नमाज तो पढ़नी होती है, हर जुमे में जा कर नमाज तो पढ़नी है ना। अब जब भी कहीं बेचैनी होगी ना, तो मुखालिफ कौम जो होती है ना, वो दुश्मन की जो मजहबी बातें होती है ना, उसकी ईंट से ईंट बजाती है। ये शुरू से हिस्ट्री में आता जा रहा है। बैतुल मक़दस जिसके हाथ में आया ना, नसारा या यहूद, इन दो के हाथ में असल में रहा ना। हज़रत उमर से पहले पहले यरूशलम कभी यहूद के हाथ में आता था, फिर कुछ सदियों के बाद नसारा के पास आता। जिसके पास भी आता था ना, उसका गलबा ऐसे आता था कि वो गैर दूसरी जो कौम थी ना, उसके इबादत खानों को ख़राब कर देते थे, फिर उधर आता तो वो बदला ले लेते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी कोई बड़ी ताकत जुल्म की इस हद पे पहुंच जाए कि दूसरी कौम की मजहबी इबादत को भी गैर महफूज कर दे, तो समझ लीजिए कि फिर ये उसका आखिर है, इंजाम गलत होता है। कि जब मुसलमानों की मस्जिदों में भी गोलियां चलने लगें, चलें बाजारों में और जुआ खानों में तो लोग गैर महफूज होते ही हैं क्योंकि वहाँ जवारी और शराबी किस्म के लोग होते हैं, लेकिन जब मस्जिदों के अंदर गोलियां चलने लगें, जब मस्जिद में आए हुए जो दिन में 17 बार कह रहे हैं या का ना बुदू या का नस्तैन, उनका टेम्परामेंट इतना लूज होने लगे कि वो बात बात पे गोली चला दें और दूसरों के मसलक के खिलाफ बात देकर उनको मस्जिदों से निकालने लगें, तो याद रखें कि फिर हक की बात दब जाती है। और यही बात जहाँ फरमा दी कि अगर वलऊलदफुल्लाहिन्नासा, अगर अल्लाह बाज का बाज से बचाव ना करता, एक को दूसरे से ना हटाता, तो याद रखो यानी अगर जालिम का हाथ अल्लाह ना पकड़ता, अल्लाह ताला ताकतवर को ना पकड़ता, तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या था? लहुद्दीमत, हुदीमा से हा दाल मीम इसका रूट होता है, उर्दू में भी बोलते हैं ना, इबारत मुनहदिम कर दी गई यानी गिरा दी के मानों में, गिरा दी जाती, गिराना मुनहदिम। अल्लाह के नबी सल्लम की एक दुआ में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, क्या गिरा दी जाती? सवामया। सवामया का लफ्ज़ है, ये सवमतुन की जमा है, पहाड़ों और जंगलों में आबाद लोग उनकी जगह, यानी तारिकुद दुनिया जो राहब होते हैं ना उनकी इबादत गाहें, हुजरे। आपने पीछे वाक्य में सुना था, जुरैच नाम का एक राहब था और किसी जंगल में उसने एक छप्पर डाला हुआ था, तो वो छप्पर, वो इबादत खाने, वो हुजरे जो राहब अपने लिए बना लेते हैं, उनको सवामे कहते हैं, ठीक है, मखसूस। ये भी गिर जाते, यानी जंगलों में भी लोग महफूज नहीं रहेंगे। फिर वबीयाउन, ये लफ्ज़ गौर से पढ़िएगा, बाज़ लोग इसको बीउन कह देते हैं, ये है बीयाउन, आइन से है, ये बी आतुन की जमा है, यानी इसके आखिर में ताए मरबूता लगा दें। बिया कहते हैं ईसाइयों के गिरजे यानी चर्चेस, आप इसके ऊपर चर्च लिख लेंगे तो बात आसान हो जाएगी, कनीसा भी बोलते हैं इनको। और तीसरा लफ्ज़ है बस सलावातुन, कलीसे। सलावातुन का लफ्ज़ जो है ये सलूता भी कहते हैं इसको, यहूदियों के इबादत खाने यानी सिनेगॉग्स जिसको आज के दौर में आप बोलते हैं, यहूद के इबादत खाने। और चौथे हैं मसाजिद, मस्जिद की जमा यानी मुसलमानों की इबादत का है। गोया के इसमें सारे मारूफ मजाहब की मजहबी इमारात के नाम लिए गए कि अगर कुफार से किताल और जिहाद के अहकाम ना आते, अल्लाह उजीना लिल्लजीना युकातलूना बिअन्नहुम जुलिमू का हुक्म ना देता, तो एक वक्त ऐसा आ जाता कि ये जालिम इतने बढ़ जाते कि सारे मजाहब की इबादत गाहों को ख़त्म कर देते, किसी मजहब और मिल्लत के लिए अमन की कोई जगह ना होती और लोग इस तरीके से दूसरों को तकलीफ़ देते। पता क्या चला कि अल्लाह ताला ने जंग की इजाज़त दे के, दुश्मन का हाथ पकड़ने की इजाज़त देकर बहुत सारी चीज़ों को बचा लिया। और अगर एक ही कौम का इक्तदार बाकी रहे तो इनमें तकब्बुर आ जाता है, वो अपने गलत कामों को सही करार देते हैं। तो आप कह सकते हैं कि नायात में अल्लाह ने अपना कानून दफ, दाल फाइन, कानून दफ जो है वो बयान किया है कि मैं उनको हटाता हूँ, उनका जवाल शुरू होता है, चाहे वो ऐश में चले जाएँ या जुल्म में चले जाएँ, तो थोड़ा सा उनका जोश ठंडा होता है तो फिर उसके बाद दूसरी तरफ आ जाता है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि सिर्फ इबादत गाहों का तذکرہ क्यों किया है, बाज़ारों का क्यों नहीं किया, या घरों का क्यों नहीं किया, मॉल्स का क्यों नहीं किया? तो उसका जवाब ये है कि इबादत का वो चीज़ है, वो जगह है जिसमें लोग अमन के लिए आते हैं, महफूज समझी जाती हैं। तो जिन इलाकों में इबादत गाहें ढा दी जाएँ, तो सोचिए कि ये फसाद की फिर आखिरी किस्त है, इसके बाद ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, ये जो बात है ना, मसाजिद युस्कर फी खस्मुल्लाह ही कसीरा, बाज़ ने ज़बरदस्ती इसमें सवामे व बिया व सलावात को भी लिया, कहते हैं कि ये इन सब में अल्लाह का जिक्र बयान होता है। अगर आप मान लें तो यहूद नसारा भी अल्लाह का जिक्र तो करते ही है ना, लेकिन किस खुदा का करते हैं ये नहीं पता, वो जीसस गॉड का करते हैं या अल्लाह का करते हैं, लेकिन यहाँ आप फील करेंगे तो मसाजिद के साथ इस्मुल्लाह का लफ्ज़ आ रहा है। आज के दौर में तो अल्लाह ही का नाम सिर्फ मस्जिदों में ही है, किसी दौर में अगर होता था तो फिर वो उन जगहों में भी होता था। फिर फरमाए वाला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, यकीन करें इस आयत को अगर आप बड़े खूबसूरत लफ्ज़ों में लिखें। आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दूंगी, मुझे इस आयत से बहुत फ़ायदा हुआ। इंसान की फितरत में लालच है, हम जितना भी बेनियाज होकर अल्लाह के दीन का काम करना चाहें ना, दीन की बातें कोई भी सोशल वर्क, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोच ज़रूर जाती है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा हो रहा है। मसलन जैसे हम बात करते हैं कि हम जिम्मेदारी समझ के तबलीग करते हैं ना, हमारा फ़र्ज़ है उम्मत मुसलमान के नाते, लेकिन ना चाहते हुए भी दिल में ज़रूर लालच आ जाता है कि मेरे कहने से अगर कोई दीन पे आएगा तो मेरा सदका जारिया बनेगा। बात समझ रहे हैं ना? हर उस्ताद ये सोच लेता है ना चाहते हुए भी कि नहीं, इसके आने से मेरा तो फ़ायदा है ना कि मेरा सदका जारिया बढ़ेगा। अब उस सदका जारिया की सोच लेके आखिरत में जाती है ना बंदे को। अब आप सोचिए, जैसे आप यहाँ पढ़ने आए हैं, आप दीन की मदद कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अल्लाह ने यार ये नहीं कहा वाला यंसुरन दीन अल्लाह, अल्लाह की मदद, यानी यहाँ अल्लाह की मदद कौन करेगा? कोई कर सकता? वो तो अन नासिर अन नसीर, वो तो खुद है। यहाँ अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद है, अल्लाह उसकी मदद करेगा। यानी ये आयत एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है दीन का काम करने की। आप क्या करें कि एक खूबसूरत सी कैलीग्राफी में इसको लिखें? आपके सेलफोन्स अमूमन आपके हाथों में रहते हैं, क्या रहता है? की चेन रहती है। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ आपके हाथों में होती है? टेलीफोन ही रहते हैं माशाल्लाह। जो होता है उस पर लिख के चिपका लें। तो जो अल्लाह की मदद करेगा, अल्लाह उसकी ज़रूर मदद करेगा। यकीन करें, ये है वो जुमला जो आपके घर वालों को ठंडा कर सकता है। ये आपके दीन की तरफ से रुके हुए कदमों को तेज़ कर सकता है कि देखो अल्लाह के बंदे, मैं मदद करने नहीं जा रही, अल्लाह की मदद लाने जा रही हूँ। फिर जो बंदे की मदद होती है ना, बंदा अल्लाह के नाम को बुलंद करना चाहता है, अल्लाह उसके नाम को बुलंद कर देता है। बंदा अल्लाह के दीन का दिफा करता है, अल्लाह उसका दिफा कर देता है। लेकिन याद रखे, दिफा करना, मदद करना, ज़रा इसके साथ ही सोचें कि हालात फ़र्क होते हैं ना। मसलन एक मुल्क ऐसा है कि जहाँ कुछ चोरियाँ ही नहीं होती। अब वहाँ चीज़ों की हिफाजत कोई मुश्किल है? आप घर में भी पैसे रखे, सोना रखे, चांदी रखे, आपके सर पे कोई पुलिस का एहसान नहीं है। आप इस गली में कोई चौकीदार नहीं रखेंगे, आप कहेंगे ज़रूरत ही नहीं, कोई ख़तरा ही नहीं है। एक वो दिफा, अब लिखें ज़रा इसमें स्टेप्स आएंगे। यानी एक वो हालात होते हैं जिसमें कोई ख़तरा ही नहीं था। अब आप सोच लें, दीन को हीरे की पोटली है, कोई भी डायमंड्स की पोटली है आपके पास। वाकई डायमंड्स भी अल्लाह ने बनाए, दीन भी उसका है, कोई तकाबुल भी नहीं है, मैं तो कहते हुए भी यही सोच रही हूँ। लेकिन अपनी नज़रों में आप कोई कीमती चीज़ सोचें कि अल्लाह का दीन एक खूबसूरत सी कीमती पोटली की सूरत में आपके पास था, दुनिया में आया। एक वो दौर होता है ख़तरा ही कोई नहीं। अब उस वक़्त कोई हिफाजत करेगा तो उसका कोई ख़ास अजर है तो सही, लेकिन उतना नहीं। सिक्योरिटी गार्ड को पैसे तो देने ही पड़ेंगे गवर्नमेंट को, क्योंकि वो एक अपनी अपॉइंटमेंट पे। लेकिन आप सोचें कि आपको पता चले कि आजकल एक गैंग निकला हुआ है, चोरों का एक गिरोह है, और गली गली फिर रहा है आपके उस डायमंड की तलाश में, किसी जगह मुखबरी हो गई। आप बताएं कि उन हालात में जो उस डायमंड की पोटली की हिफाजत करेगा, उसका मुकाम बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना। बस ये है खुशकिस्मत लोगों के हिस्से की बातें। अल्लाह ताला के दीन की नशर व इशात, ये बड़े ही ऑनर वाला काम है। जो तौहीद की शम्मा को हाथ में लेकर तूफानों और आंधियों से उलझता हुआ आगे बढ़ता है ना, ताकि लोगों के दिलों से अंधेरे ख़त्म हो, लोग कुफर से, शिर्क से पाक हों। वो कुफर, शिर्क और बिदत जिसने सदियों से खैमे गाड़ रखे हैं लोगों की ज़िंदगियों में, वहाँ हक का बोलबाला हो जाए तो अल्लाह ऐसे लोगों की मदद खुद करता है। ये अल्लाह का अटल कानून है, आप माने के ना माने। कल भी हुआ, आज भी हुआ, हो रहा है और कल तक होता रहेगा। जिसको यकीन नहीं आता, जाके आजमा के देख ले। कहते हैं ना कि आजमाइश शर्त है, शर्त या इलाज, 100% गारंटेड। मैं तो इसकी सबसे बड़ी गवाही दूंगी। मैं कहती हूँ, जितना बंदा अल्लाह के काम में आता है ना, अल्लाह उसके काम संवारता है। सिर्फ एक दफ़ा आपको अपना हर मामला अल्लाह के हवाले करने की ज़रूरत है। वो इन्नल्लाह लकवीयुन अज़ीज़, वो गालिब, वो कवी है। आप और मैं किसी चीज़ की क्या हिफाजत करेंगे? हम क्यों बैंकों में जाके पैसे डाल देते हैं? क्योंकि हमारा ख्याल होता है बैंक कवी है, उनकी सिक्योरिटी अच्छी है, उनके अलार्म अच्छे हैं, वो रातों को भी पहरा देते हैं। हालांकि जब गोली चलती है तो वो गार्डमैन को चले या हमारे ऊपर चले, एक ही बराबर है। लेकिन भरोसा है ना, तो उनको दे के आ जाते हैं अपने पैसे, अपनी चीज़ें। तो जिसने अल्लाह के लिए ये सारा काम किया, जिसने अपना सारे एक्स्ट्रा एसेट्स अल्लाह को ही दे दिए, महफूज हो गया कि नहीं? देखिए, बैंक में पैसा रख के महफूज समझते हैं अपने आप को, कहते हैं सिक्योर हो गया फ्यूचर। क्यों? है पैसे, जब चाहेंगे निकाल लेंगे। संडे को निकालने देते हैं पैसे, या अब क्या करेंगे आप? नहीं निकाल सकते, मुश्किल आ गई, वेट करना पड़ेगा ना। फिर लिमिट होती है कुछ बैंकों से पैसा निकालने की? बिल्कुल होती है। क्या करेंगे अगर उससे ज़्यादा मुश्किल आ गई? लेकिन अल्लाह का बैंक हर वक्त खुला, डे एंड नाइट, फुल टाइम सर्विस। दुनिया के बैंक लिमिटेड, अल्लाह का बैंक अनलिमिटेड। नोटों का भी मैंने देखा है कि होता है, छोटे नोट नहीं निकालो, बड़े निकालो, बड़े नहीं निकालो, छोटे निकालो। जैसे अमेरिका में अगर कोई बैंक से नोट निकलवाता है तो $20 के नोट निकलते हैं, 100 का नहीं देते वो। फिर कुछ और करो तो फिर शायद मिलेगा। अल्लाह कहता है नहीं, बड़े से बड़ा नोट लेना है, मांग के देखो, मैं दूंगा। क्या करता है अल्लाह? कैसे लोग हैं जो अल्लाह के दीन की मदद करते हैं। अब आप 1 2 3 करके नोट करते जाएं। अल्लज़ीना अमक्कन्नाहुम फिल अर्दी, वो लोग, कौन लोग? मैं यंसुरुहू, कौन अल्लाह की मदद के मुस्तहिक हैं? मैं इस जुमले को बोल रही थी ना, तो मेरे जहन में एक जुमला आ गया जो अक्सर लोगों से सुनती रहती हूँ, और वो क्या है? सोशल हेल्प। क्या बोलते हैं? सोशल हेल्प ही बोलते हैं ना, सोशल सिक्योरिटीज़। किनको मिलती हैं? जो वहाँ के नेटिव्स हों, जो वहाँ लीगल हों, जो टैक्स पे करें। और किसको मिलती हैं? डिज़र्व करें, कुछ शरायत है ना। अल्लाह कहता है कि मैं मदद करूँगा जो मेरी मदद करेगा, लेकिन शरायत है। पहली शर्त, अल्लज़ीना इमक्कन्नाहुम फिल अर्दी, वो लोग कि अगर उनको हम इक्तदार बख्शें, तो वो पहला काम क्या करें? खजाने का दरवाज़ा खोलें और तिजोरियाँ भर लें, सारी चेकबुक्स के अंदर अपने नाम लिखवा लें, हर चलते बिजनेस में अपना शेयर डलवा लें। देखिए, जब रियाया ऐसी बातें करती सुनती है ना, मैं सुनती हूँ लोगों की चलते फिरते बातें, कि जो कारोबार बढ़ता है उसमें हमारे बड़ों का हिस्सा डल जाता है, वरना धमकी है कि हम इसको बंद कर देंगे। फलां चेन है, वो हर रोज़ इतना दे रही है हमारे बड़ों को, फलां इतना दे रही है। जब आम पब्लिकली ये बातें होने लगे, तो मैं सोचती हूँ कि ये बातें उनके कानों तक भी तो पहुंचती होंगी ना। मुझे ऐसे इत्तफाक हुआ, एक आध जगह चलते फिरते, कहीं खाना खाते पीते बातें, क्लिप्स देखने का कुछ खबरों के, सरे आम लोग हुक्मरानों के नाम लेके उनको कह रहे हैं कि उनको ये अब सोचना चाहिए, अब उनको अल्लाह से डरना चाहिए, खौफ खाना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ, मेरे जैसा बंदा जो बिल्कुल ही नहीं इन चीज़ों को देख पाता, तो जो लोग हिट मीडिया पे होते हैं वो खुद नहीं सुनते होंगे। लेकिन आप इमेजिन तो करें कि जब इमक्कन्नाहुम फिल अर्द की कैफियत हो जाए कि इकतदार मिले, तो उसका नशा चढ़े या नशा उतरे। आपको पता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज शहजादे थे, मोटे, और जब खलीफा बने सूख के कांटा हो गए। कहते हैं कि उनको कहीं चुटकी भरते थे तो स्किन नहीं आती थी हाथ में, इतना खौफ था। हजरत उमर फारूक कहा करते थे कि दरियाए फरात के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो ए उमर, तुझसे उसका पूछा जाएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी ने कुछ पैसे बचा के मीठी चीज़ बना ली कि आज शौहर को बताऊंगी कि आपकी पसंद की चीज़ बनाई है। कहा, कहाँ से आए पैसे? कहा, वो पैसे जो रोज़ मिलते हैं उसमें थोड़े थोड़े बचाए, बैतुल माल से मिलता है, क्योंकि खुद तो काम नहीं करेंगे। वो जो इज्तमाही काम करता है उसका खर्चा भी इज्तमाही लोग उठाते हैं, तो बैतुल माल से आता था हिस्सा अबू बकर के घर के खाने का। कहा, अच्छा, इसका मतलब कि इतनी गुंजाइश है कि तुम्हें कम दिया जाए। ऑर्डर पास किया कि कल से मेरा खर्चा कम कर दिया जाए। इमक्कन्ना हो फिल अर्दी, मक्कन यो मक्किनो तमकीन, इसी से लफ्ज़ मकन, मकान, इमकान। हम अपनी कामयाबियों के इम्कान खुद बढ़ाते हैं और खुद घटाते हैं। पहला काम है मुसलमान हुक्मरानों का, अकामुस्सला। मुसलमान है इसलिए तौहीद की बात तो आई नहीं, कलमा ला इला तो है ही, उसी के नाम पे तो हुकूमत मिली थी, ला इलाहा इल्लल्लाह तो है ही। अब अकामुस्सलात, अब कायम करें इज्तमाई नमाजों का माहौल, वातवुज़्ज़का, پھر زکوٰۃ دینے کا نظام بنائیں. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ, اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو نیکی کا. کون کوئی مولوی کریں گے؟ نہیں, حاکم وقت کرے گا. اسی لیے ایک دور ایسا تھا کہ مسلمان خلیفہ جو ہوتے تھے وہ قاضی بھی ہوتے تھے اور امام مسجد بھی ہوتے تھے اور جمعہ کا خطبہ بھی وہی دیتے تھے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَر, اور روکتے ہیں ان کو برائی سے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُور, اور اللہ کے لیے ہے سارے کاموں کا انجام. آپ بتائیے, جہاں ایسے حکمران آ جائیں, جہاں ایسے نظام چلیں گے, کیا پھر وہاں اللہ کی مدد آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں فلاں ایک پینی ٹیکس نہیں دیتا, کوئی ہے ہی نہیں نظام. یقین کریں کہ وہ جیسے کسی الماری کے سارے ڈراز ٹوٹ جائیں اور جتنی چیزیں ساری ایک ہی کھاتے میں پڑ جائیں نا, اس طرح وہ چھن چھن بج رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک. کوئی ٹریفک پہ آپ چل رہے ہیں, آپ کی مرضی, جس کی لاٹھی اس کی بہن. کوئی رول نہیں, کوئی ٹریفک نہیں, کوئی لین نہیں, مال دھندے میں نہیں, کہیں کوئی رول ہی نہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کہتے ہیں میں مدد کروں گا, پہلے سیدھے تو ہو. سونا اگلتی ہوئی زمینیں ہمارے ملکوں کی, ہمارے مسلمانوں میں جتنی سکلز ہیں. کیا خیال ہے مسلمانوں کو اللہ دماغ کے بغیر پیدا کر رہا؟ کیا ان کے اندر ہمت طاقت نہیں؟ برین ہے. آپ کو پتا ہے کینیڈا میں ایک جگہ ہے, اتفاق بھی ہو مجھے جانے کا, ایک مسلمان کے نام پہ وہ روڈ بنی ہوئی ہے, کیونکہ ایک کچھ سال پہلے وہاں انہوں نے اس کی سارا نقشہ بنایا اور وہ بہت اچھا رہا کہ آج وہ نام مسلمان ملک شخص کا نام ہے اور اس نام پہ وہ روڈ ہے. اور ایسی کئی مثالیں موجود ہیں. ایک ایسی کمیونٹی ہے غالباً شالیمار اس جگہ کا نام ہے, وہ تو قدر کرتے ہیں, جب کسی میں خوبی ہوتی ہے وہ ان کا نام رکھتے. اب آپ کہتے ہیں کریں کیا؟ بس دعا کرو کوئی اللہ مجاہد بھیج دے, بس دعا کرو پاکستان میں اور مسلمانوں میں خلافت آ جائے. آ گئی. آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں, آپ کو خود بھی ہنسی آئے گی. صرف میں کوئی سیاسی بات نہیں کر رہی, شعور کو بیدار کرنے کے لیے بات کر رہی ہوں. کل سے ایک لاء پاس ہوتا ہے, اور سچی بتاؤں میں بات کہتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ ہمارا وزیر اعظم یا صدر کون ہے, مجھے فرق نہیں پتا. ایک نام میرے ذہن میں, لیکن واللہ ہی مجھے اس وقت نہیں پتا وہ صدر ہیں کہ وزیر اعظم ہیں. بہرحال آپ ایک قانون پاس کرتے ہیں کہ کل سے صدر پاکستان کا نام بدل کے خلیفت المسلمین رکھ دیا. آپ لائیں ذرا اس نام کو, جو بھی آپ کے ذہنوں میں آتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ان کا نام کل سے وہ خلیفت المسلمین ہے. کیسا تصور آتا ہے؟ نام بدلنے سے کیا ہوگا؟ آپ کل سے زکوٰۃ کمیٹیاں بنا دیں, کیونکہ آپ کہتے ہیں جو ہی نام بدلیں گے یوں پاکستان سیدھا ہو جائے گا, لوگ مسجدوں کی طرف بھاگیں گے بھاگیں گے. ہنسی آ رہی ہے نا سوچ کے؟ ناموں سے کیا ہوگا؟ یہ تو ایسی ہے کہ جو گیدڑ ہے وہ شیر کے کپڑے پہن لے تو شیر بن جائے گا. ناموں سے کچھ نہیں ہوگا, پہلے کے لوگ پیدا کرنے ہوں گے. لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا, ویئر وی کین اسٹارٹ فرام, ویئر وی کین اسٹارٹ, کہاں سے شروع ہوں؟ یہاں سے شروع ہوں, ایک ایک بندے کے اوپر جائیں. پہلے فرد کی صورت میں تو نمازی بنو, صلات ہو. جب ایسے لوگ ہوں گے حکمران تو خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. کہتے ہیں ایک برا گیا شکر کیا, اب اس سے بھی برا آ گیا, اب وہ جائے گا تو اس سے بھی بڑا شکر کریں گے. چہرے بدل کے لوگ آتے جائیں گے. لوگ کہتے ہیں فلاں آئے گا, دیکھنا اگلے دن ساری سینکشنز ختم ہو جائیں گی, دیکھنا اگلے دن ساری ایکسپورٹ جو وہ کھل جائے گی, چلو جی کاروباری طبقہ خوش ہو گیا. اور وہ تھوڑی دیر خوش ہوئے, پھر کچھ ہاتھ پڑے, کہتے وہ لاؤ جو سارے زمینداروں کو خوش کر دے. یہ آنکھ مچولی کا کھیل ہم پچھلے 60 سال سے دیکھ رہے ہیں. دوسرے ملکوں کی سیاست ہمیں نہیں پتہ, لیکن وہ بھی باتیں بڑی معروف ہوئی ہوتی ہیں. کچھ نہیں ہوگا. کہاں آج میں اور آپ کیا کریں؟ ہم خواتین ہیں نا, کمزور, ہماری تو گھر میں نہیں سنی جاتی ہوگی, باہر کون سنے گا؟ ہم کیا حصہ ڈالیں؟ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُ, خود سیکھیں, قرآن کی تعلیم اندر لائیں, اپنے بچوں کو سکھائیں, مردوں تک بات جائے, بیٹوں بچوں تک جائے, ہر بندہ دین کو سیکھے, فرد سے کام شروع کرے. بالکل آپ کہیں گے یہ کوئی آپ دے رہی ہیں پروٹوکول, میں نے یہ آپ کوئی دے رہے ہیں پیکج, نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال چوٹیں کھلا کھلا کے نمازیں پڑھائیں, روزے رکھا ہے, جہاد کی بات تو کی 15ویں سال پہ. ہم پہلے دن ہی کہتے ہیں کہ مسجد بھی جا رہے ہیں تو گولیاں ساتھ لے کے جائیں گے, کسی نے روکا تو خود کو ہی مار لیں گے. یہ کون سا اسلام ہے؟ وللہ عاقبۃ الامور. تلاوت سنیں اور دعا کریں ساتھ ساتھ کہ اللہ ہمیں سیدھی سمجھ دے دے.
ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور
أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله